الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، رمضان آدھے سے زیادہ گزر گیا ہے اور ہمارے اندر، ہماری روح کے اندر اور ہمارے دل کے اندر اس نے اپنے اثرات چھوڑنے شروع کر دیے ہیں. جیسے جیسے ہم روزے رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارے اندر تقوی اور للہیت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمیں اپنے اوپر ضبط اور کنٹرول حاصل ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک رمضان کی مشکل ہوتی ہے، بلکہ ہر نیکی ہی کی مشکل ہوتی ہے، کہ آدمی جیسے جیسے نیکی میں ترقی کرتا ہے، ویسے ویسے شیطان بھی اس کے اوپر زیادہ حملہ آور ہوتا ہے، اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور کچھ نہ ہو تو اس کے اندر ایک شان، اپنے بارے میں احساس برتری پیدا کرتا ہے. یہ بھی نہ ہو تو ریاکاری کی طرف آدمی کو موڑتا ہے، کہ آدمی دوسروں کے لیے، دوسروں کے سامنے اپنی نیکی کا اظہار کرے. اس طرح سے شیطان کئی چیزوں میں ہمیں ڈال کر، مبتلا کر کے، تو نیکی کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کو بھی زائل کرنا چاہتا ہے، اور اسی طرح یہ بھی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری نیکی کو ضائع کر دے. تو رمضان کی اس ہم آہنگی میں اور اس کے تقوی اور نیکی کے اس بہاؤ میں ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ شیطان کہیں ہمیں ان چیزوں میں الجھا کر ہماری نیکی کو برباد نہ کر دے، اور نہ ہی ایسا ہو کہ ہمارے اندر احساس برتری پیدا ہو. خاص طور سے ان لوگوں کے بارے میں تو عام طور سے یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے جو روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے، بھئی ہم رکھنے والے ہیں، یہ رکھنے والے نہیں ہیں، یہ تو روزے چھوڑے ہوئے ہیں، ہم تو بڑی محنت مشقت کر رہے ہیں. جس دل میں یہ احساسات پیدا ہو جائیں، سمجھ لیجئے کہ اس نے روزے سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا. کل ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی برائیوں کے اندر جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے، ان چیزوں میں سے ایک قتل کرنا بھی تھا. ہم نے اس کی دو صورتیں دیکھی تھیں کہ لوگ غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں، یا انتقام کے جذبے سے، غیرت کے جذبے سے لوگوں کو قتل کر ڈالتے ہیں. آج ہم مذہبی منافرت کی بنیاد پر سمجھیں گے کہ یہ بھی ایک بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ نے، جیسا میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، کہ دو وجہ سے انسان کی جان لینے کی اجازت دی ہے، وہ بھی بذریعہ عدالت، بذریعہ حکومت. کسی شخص کو انفرادی حیثیت میں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی بڑے سے بڑے جرم پر کسی کی جان لے سکے. تو مذہبی طور پر ہمارے ہاں جو تشدد اور قتل و غارت کا بازار گرم ہے، یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے. خواہ آدمی یہ سمجھتا ہو کہ میں نے ایک کافر کو قتل کیا ہے، خواہ آدمی یہ سمجھتا ہو کہ میں نے اپنے مخالف کو قتل کیا ہے، دونوں صورتوں میں وہ ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. قتل نفس مذہب کی بنیاد پر اور بھی شدید ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اس بات پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہ مذہب کی خاطر کسی کو صرف تنگ کیا جائے، کسی کو مارا پیٹا جائے، قتل کی بات ابھی نہیں ہوئی ہے، مارنا، پیٹنا، گھر سے نکال دینا، بچوں کو تنگ کرنا، گالیاں دینا، الزام دینا، اگر مذہب کی خاطر یہ کام ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اشد من القتل، یہ جرم قتل سے بڑا ہے. تو جب قتل کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کتنا سنگین جرم ہو گیا. تو مذہب کی بنیاد پہ کسی کے خلاف تلوار اٹھانا، کسی کو گولی مار دینا، یہ نہایت کبیرہ گناہ ہے. قتل خواہ کسی بھی شخص کا ہو، کسی بھی پہلو سے ہو، وہ قتل ہے. خواہ آپ انتقام میں لے رہے ہوں کیونکہ آپ نے مقدمہ ثابت نہیں کیا، آپ نے عدالت میں لے کر نہیں گئے، آپ بھی ویسے ہی مجرم قرار پا گئے. جیسا کہ صرف ایک صورت ہوتی ہے جس میں آدمی مجرم قرار نہیں پاتا، کہ آدمی دفاع کرتے ہوئے، اپنی جان بچاتے ہوئے دوسرے کو مار ڈالے. تو یہ بلا شبہ ایسا معاملہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بھی رعایت کرتے ہیں، قانون بھی رعایت کرتا ہے، لیکن جب آپ کے ہاتھ سے وہ نکل گیا، جب وہ حملہ کرنے آیا تھا، آپ دفاع نہیں کر سکے، تو اب آپ کو عدالت میں جانا ہے. عدالت میں جانا ہے اور عدالت ہی میں ساری جنگ لڑنی ہے، عدالت ہی میں اس کو سزائے موت دلوانے کی کوشش کرنی ہے. اس سے باہر آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر باہر نکل کر ایک پتھر بھی ماریں گے تو وہ بھی حدود سے تجاوز ہے، اور اللہ کی نظر میں یہ ایک برا فعل ہے. तो कत्ल के बारे में जान लेने के बारे में हमारे यहाँ बहुत बेपरवाही इख्तियार कर ली गई है और इतनी आम फतवे दिए जा रहे हैं, इतनी आम बातें कही जा रही हैं कि हर शख्स ने अपने लिए एक जिहाद का रास्ता बना लिया है कि मैं अपने मुखालिफीन को मारूंगा और जन्नत में चला जाऊंगा। इनको ये बिल्कुल एहसास नहीं है कि ये बहुत बड़ा जुर्म है, खास तौर से जब अल्लाह ताला के नेक बंदों को, साहिब ईमान लोगों को कत्ल कर दिया जाए। यानी हम सब मुसलमान हैं, किसी ने अगर किसी मसले में इख्तलाफ किया है तो महज इख्तलाफ की वजह से वो काफिर नहीं हो जाता, तो मुसलमान का कत्ल करना आम कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। आम जुर्म के आम आदमी के कत्ल करने के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सन औ फसाद फिलर्स का अन्नमा कतल नासा जमीया। अगर हम आप किसी भी जान को इसके बगैर कि उसने किसी जान को मारा हो, यानी वो कातिल हो, कातिल अगर नहीं है तब, और उसने फसाद फिलर यानी तखरीबकारी, कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा कर दिया, कोई बगावत खड़ी कर दी, अगर ऐसा कोई जुर्म नहीं किया और हमने उसको मार डाला, तो कुरान मजीद फरमाता है कि फकान नमा कतल नास जमिया, तो गोया यूं समझो कि उसने तू पूरी इंसानियत को कत्ल कर डाला, तमाम के तमाम लोगों को कत्ल कर डाला। ये आम आदमी के कत्ल का जुर्म है जिसमें मजहब इस्लाम जेर बहस नहीं है, यानी वो मुसलमान हो ना हो उसने इतना बड़ा जुर्म किया, और अगर मुसलमान हो जाए तो मामला और भी संगीन हो जाता है। अब हम किसी के दिल में झांक कर नहीं देख सकते कि एक आदमी जो हमसे इख्तलाफ राय रखता है, हम जिस मसलक को मानते हैं वो उस मसलक को नहीं मानता, तो इस वजह से जरूरी नहीं कि वो अल्लाह की नजर में भी गैर मोमिन हो गया हो। मेरी आपकी नजर में हो सकता है वो गैर मोमिन हो, मेरा और आपका फतवा हो सकता है कि वो गैर मुसलमान हो, लेकिन अल्लाह की नजर में हो सकता है कि वो हमसे ज्यादा बेहतर हो, अल्लाह की नजर में हो सकता है उसका ईमान हमसे ज्यादा मोतबर हो, लेकिन वो किसी गलती की वजह से, किसी फतवे की वजह से, किसी और दलील की वजह से हमसे मुख्तलिफ राय रखता हो। तो इख्तलाफ राय की बुनियाद पे कत्ल कर देना ये किसी मोमिन का शेवा नहीं है। अल्लाह ताला ने तो यहां तक इसके ऊपर संगीन इसको जुर्म करार दिया है कि एक मौके पर अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान मजीद में कि अगर बंदा मोमिन गलती से कत्ल हो जाए तो उसके ऊपर अल्लाह ने देखिए क्या कहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक तुम दियत अदा करोगे और दूसरा ये कि तुम कफारे के तौर पर 10 मस्कीनों को खाना खिलाओगे, 2 माह के रोजे रखोगे। तो ये 2 माह के रोजे मुसलसल रखने, अगर गुलाम नहीं, गुलाम आजाद करने का कहा गया, अगर गुलाम नहीं है तो 2 माह के मुसलसल रोजे रखने गए, वजह बताई तौबतन मिन अल्लाह, ताकि अल्लाह के हवाले से तौबा की जाए कि मुझसे एक बड़ा गुनाह सरजद हो गया है, एक बंदा है मोमिन मेरे हाथों गलती से कत्ल हो गया, आपने इरादा। इरादा नहीं किया, कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई कुछ नहीं था, आप जा रहे थे, आपकी गाड़ी को लग के टकरा के मर गया, तो आप अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तौबा के लिए 2 महीने के मुसलसल रोजे रखो। इससे ये मालूम होता है कि बंदा मोमिन गलती से कत्ल हो जाए तो उसका ये मामला है। तो जिसको हमने खुद कत्ल किया हो, जिसकी प्लानिंग की हो, जिसके लिए मारने के लिए हमने पूरा प्रोग्राम बनाया हो, वो एक संगीन जुर्म हो जाएगा, उसमें 2 माह के रोजे क्या पता नहीं क्या कुछ करना पड़ेगा कफारे के लिए, और कल क्यामत वाले दिन ये कातिल आपका गरेबान पकड़ कर खड़ा होगा कि मुझे किस जुर्म की सजा दी गई, मेरी जान किस लिए छीनी गई। उस वक्त आपके पास कुछ नहीं होगा सिवाय इसके कि आप अपनी नेकियां उसको दे दें या उसके गुनाहों को अपने खाते में डाल लें। तो ये जो मामला है इसको अच्छी तरह जान लीजिए कि बंदा मोमिन किसी की जान माल और आबरू से बहुत दूर रहता है, वो उनका मुहाफिज है बजाय इसके कि वो उनको तबाह करे, उनको खराब करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अल मुस्लिम मन सालिम अल मुस्लिमून मिन लिसाने ही वजदे, मुसलमान वो सही मानी में मुसलमान है कि जिसके हाथों से और जिसकी जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। हाथ क्या है, हम मारते हैं, कत्ल कर सकते हैं इन्हीं हाथों के जरिए से। जुबान क्या है, हम तबसरा करते हैं, तानो तशनी करते हैं। हम आगे चलकर देखेंगे कि अल्लाह ताला ने इसको कबीरा गुनाहों में से बनाया है तानो तशनी को भी, लेकिन यहां हाथों के अमल के एतबार से जान लीजिए कि अगर मेरे हाथों से दूसरे मुसलमान महफूज नहीं है, उनकी जान, उनका माल, उनकी आबरू, तो मेरे इस्लाम का कोई एतबार नहीं है। हो सकता है कि अल्लाह ताला कल मेरा ईमान मेरे मुंह पे दे मारें और कहें कि तुम तो मेरे बंदों को कत्ल करते फिरते थे, तुम तो मेरे बंदों की इज्जत से खेलते रहते थे, तुम्हें आज जन्नत में जाने का कोई हक हासिल नहीं है। तो बड़े नेक नौजवान, खासतौर से मेरे सामने उन लोगों के चेहरे हैं कि जो निहायत मासूमियत से लोगों के कहने के ऊपर जाकर दूसरों को कत्ल कराते हैं, दूसरों के लिए जान और माल का मसला बना देते हैं, उनके लिए मेरी दरख्वास्त है वो इस मामले में अच्छी तरह गौर करें कि क्या खुदा ने किसी कत्ल की इजाजत दी है इस तरह से। पूरी शरीयत इससे खाली है कि एक आदमी को हक दे दिया जाए कि जाकर तुम कत्ल करो, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला के दीन के अंदर अदल इंसाफ सबसे बुनियादी चीज है, और जब मेरा जुर्म साबित नहीं हुआ तो मुझे अदालत से बाहर माभराए अदालत किस तरह से कत्ल किया जा सकता है? ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ताला के दीन के अंदर ऐसी बात मौजूद हो कि मेरा जुर्म साबित नहीं है, मेरा कुफर साबित नहीं है, मेरा ईमान के से फिरना साबित नहीं है, और आप आए और आकर अपने आराम से मुझे गोली मारकर चले जाएं। ये कहां की इंसानियत है, ये कहां का इस्लाम है? कुरान मजीद और हदीस नबवी इस बात में नहायत शिद्दत के साथ मुसर है कि किसी की जान नहीं ली जा सकती, किसी के जान क्या उसको सताया भी नहीं जा सकता मजहब की बुनियाद पे। मैंने अर्ज किया कि कुरान मजीद कहता है कि सताना भी, महज सताना, तकलीफ पहुंचाना, कत्ल करना तो दूर की बात है, महज तकलीफ पहुंचाना अशद्दु मिनल कत्ल, कत्ल से बड़ा जुर्म है। और कत्ल से बड़ा जुर्म होने की बिना पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कत्ल करने के बाद आप कहां मुंह छुपाएंगे जब खुदा के सामने सामना होगा। ये आपका सारा मजहब, आपकी सारे फिरके की बुलंदियां, आपके अपने तसव्वुरात की तरफ, वो सब एक तरफ धरे के धरे रह जाएंगे और आप कल खुदा के कटहरे में खड़े होंगे। एक तरफ आपका वो मकतूल होगा जिसको आपने सिर्फ इस वजह से कि उसकी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ थी कत्ल कर डाला था, तो अल्लाह ताला पकड़ कर बुलाएंगे कि बताओ मेरे इस बंदे का क्या जुर्म था, और आज इसके बारे में फैसला करो। कि अल्लाह ताला ज्यादा बेहतर जानता था कि तुम ज्यादा बेहतर जानते थे। आगे बढ़ते हैं, एक और कत्ल की किस्म हमारे यहां पाई जाती है कि दूसरों के माल बटोरने के लिए हम कत्ल कर देते हैं। मसलन भाई को कत्ल कर डाला ताकि उसकी जायदाद पे कब्जा कर लिया जाए। इसकी बहुत सारे वाकयात हमारे देहातों की जिंदगी में सामने आते रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो उसकी बेवा होती है, उसके यतीम होते हैं, वो धक्के खाते फिरते हैं और चचा और ताया और खालू और मामू उनकी जायदाद पे कब्जा कर लेते हैं। ये दोनों जुर्म, यानी कत्ल करना अपने भाई को माल बटोरने के लिए और उसके बच्चों को धक्के देते रहना और उनको दुत्कारते रहना और उनको अपना गुलाम बना के रखना, ये उससे बड़ा जुर्म है। बहुत सारे लोग एहसान जता रहे होंगे, हम यतीमों को पाल रहे हैं, लेकिन हकीकत में क्या होता है कि वो अपने भाई के, अपने चाचा के। सारे काम कर रहे होते हैं, तो यतीमों का माल भी इसी वजह से ममनू करार दिया गया खाने के लिए कि जिस शख्स ने इस काम के लिए कि वो अपने भाई का माल खाए, उसके लिए अपने भाई को मार डाले और फिर यतीमों का बेपरवाही इख्तियार करे, तो गोया उसके अंदर दो गुना इकट्ठे हो गए। एक गुना ये कि उसने कत्ल किया है, और दूसरा गुना ये कि उसने यतीमों को सताया है। यतीमों के साथ हुस्ने सलूक के बारे में हम जान चुके हैं, इसलिए ज्यादा उसकी तरफ तवज्जो दिलाने की जरूरत नहीं है। यतीमों की खुदा ने इज्जत और तकरीम करने का हुक्म दिया है। ये फरमाया है कि वो तुम्हारी सोसाइटी में ऐसे ही रहें तुम जैसे तुम्हारे तुम अशराफ के बच्चे रहते हैं। तुम्हारे अपने बच्चों की जो हैसियत है वही उनको मिलनी चाहिए। तो चाहे जाए कि हम उनको सताएं, उनके जायदाद पे कब्जा कर लें, तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो यतीमों के माल को खाता है वो अपने पेट में आग भरता है। इसके मानी ये है कि जो कुछ वो खाता जाता है काल क्यामत के दिन दोजख ही कचरिया बन रहा है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो ये कत्ल की संगीन तरीन सूरत है कि जिसमें एक आदमी अपने भाई या अपने दोस्त को कत्ल करता है और फिर उसका माल बटोरता है और उसकी यतीमों और उसकी बेवा को तंग करता रहता है। ये जुल्म की निहायत बुरी सतह है, और इससे बचने के लिए हमें उन चीजों को सामने रखना चाहिए जो अल्लाह ताला ने बताया है कि इसकी सजा कितनी सख्त है। कत्ल के बारे में चूंकि अब बात मुकम्मल हो रही है, तो मैं दोबारा अर्ज कर दूं कि कत्ल की सजा दुनिया में भी कत्ल है अगर पकड़ा जाए आदमी, ना पकड़ा जाए तो उसको यह नहीं समझना चाहिए कि वो बच गया है, कल क्यामत वाले दिन उसको हमेशा हमेशा के लिए दोजख में डाल दिया जाएगा। इसलिए कि कत्ल भी एक बहुत बड़ा संगीन कबीरा गुनाह है। وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين